कल्पना कीजिए कि किसी को केवल इसलिए भयानक यातनाएं दी जा रही हैं या मौत के घाट उतारा जा रहा है क्योंकि उसने सुअर के मांस का एक छोटा सा टुकड़ा खाने से इनकार कर दिया।
पहली नजर में ये बहुत ही अजीब और शायद थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति लग सकती है।
बिल्कुल, मतलब कोई अपनी जान बचाने के लिए एक छोटा सा समझौता क्यों नहीं कर लेता।
सही बात है, लेकिन 2000 साल पहले ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, ये एक बहुत ही क्रूर वास्तविकता थी।
और आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक और वैचारिक सफर पर जा रहे हैं। ये एक ऐसा सफर है जो सफलता, हार और सामाजिक प्रतिष्ठा की हमारी पूरी परिभाषा को ही उलट कर रख देगा।
एकदम सही कहा आपने। आज हम डॉक्टर डेविड ए. डी. सिल्वा के इब्रानियों यानी हिब्रूज 1.11 से 12.3 के विश्लेषण पर बात कर रहे हैं।
हाँ, और यहाँ मुख्य विषय है कर्म में विश्वास। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दुनिया की नजरों में पूरी तरह से हारे हुए और हाशिए पर पड़े लोग असल में इतिहास के सबसे बड़े विजेता हो सकते हैं।
बिल्कुल, और इस पूरी चर्चा की नींव एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पर टिकी है।
अच्छा, वो कैसे?
देखिए, डॉक्टर डी सिल्वा के विश्लेषण में हम देखते हैं कि इब्रानियों 11 में विश्वास के परिणामों को दो बिल्कुल विपरीत हिस्सों में बांटा गया है।
दो अलग अलग हिस्से।
हाँ, एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें उनके विश्वास के कारण बहुत बड़ी भौतिक और सैन्य जीत मिली, और दूसरी तरफ वो हैं जिन्हें उसी विश्वास के कारण दर्दनाक यातनाएं सहनी पड़ी।
और दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन लेखक इन दोनों ही समूहों को एक ही सूची में रखता है।
और उन्हें बराबर का सम्मान देता है।
अगर हम पहले समूह पर नजर डालें, जिसे आयत 32 से 35 के पहले हिस्से में रखा गया है, तो ये किसी ब्लॉकबस्टर एक्शन फिल्म की तरह लगता है।
हाँ, एकदम हीरो वाली फीलिंग।
वही तो, इसमें गिद्योन, दाऊद, शमशून और कई भविष्यद्वक्ता शामिल है। इन लोगों ने सचमुच राज्यों को जीता, न्याय की स्थापना की, दानियल 6 की कहानी की तरह शेरों के मुंह बंद कर दिए
और आग की भयंकर लपटों को भी बुझा दिया। वे मौत के मुहाने से वापस लौट आए।
बिल्कुल, कुछ कहानियों में तो महिलाओं को उनके मृत परिजन वापस जीवित मिल गए। ये सब बहुत ही विजयी, शानदार और चमत्कारिक लगता है।
और तत्कालीन श्रोताओं के लिए ये कहानियां बहुत बड़ा मानसिक संबल थीं, क्योंकि वे खुद एक बहुत बड़े और शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के बीच एक अल्पसंख्यक समूह थे।
मतलब वे खुद को बहुत कमजोर महसूस करते होंगे।
हाँ, इसीलिए जब वे दाऊद या यहूदी नायिका जूडित की कहानियां सुनते थे, जिन्होंने कमजोर होते हुए भी विशाल विदेशी सेनाओं को हरा दिया था, तो उन्हें ये विश्वास होता था कि ईश्वर बड़े बड़े साम्राज्यों को भी झुका सकता है।
ये उस चमत्कारिक विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है, जहां बाहरी दुनिया में भी आपकी जीत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
ये वो सफलता है जिसे कोई भी समाज तुरंत पहचान लेगा।
सही कहा, लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। आयत 35 के दूसरे हिस्से से लेकर 38 तक माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। हाँ, ये ऐसा है जैसे कोई कहानी एक सुपर हीरो की जीत से शुरू हो, लेकिन अचानक एक बहुत ही यथार्थवादी और अंधकार में मोड़ ले।
बिल्कुल, जहां नायकों को अंत में कोई जादुई बचाव नहीं मिलता, बल्कि वे सिर्फ कष्ट सहते हैं।
और इस दूसरे समूह में वो लोग हैं जिन्हें दुनिया की नजरों में शोषित, अपमानित और पूरी तरह से हारा हुआ माना गया, और यहीं पर वो सुअर के मांस वाली घटना आती है ना?
हाँ, एग्जैक्टली। यहाँ हम 1667 से 1664 ईसा पूर्व के हेलेनाइजेशन संकट की बात कर रहे हैं। सीरियाई राजा एंटियोकस चतुर्थ का शासन था।
अच्छा, और उसका लक्ष्य क्या था?
उसका लक्ष्य केवल राजनीतिक नियंत्रण नहीं था, वो यहूदी संस्कृति और धर्म को पूरी तरह से मिटाकर वहां ग्रीक संस्कृति यानी हेलेनिस्टिक जीवन शैली को थोपना चाहता था,
जिसे हेलेनाइजेशन कहा जाता है।
हाँ, तो राजा ने आदेश दिया कि सभी को ग्रीक देवताओं की पूजा करनी होगी और यहूदी व्यवस्था के खिलाफ जाकर सुअर का मांस खाना होगा।
ये तो सीधे तौर पर उनकी पहचान पर हमला था।
बिल्कुल, मकाबी किताबों में एलिजियार नाम के एक बुजुर्ग पुरोहित की और एक माँ और उसके सात बेटों की दर्दनाक कहानी है।
तो एंटियोकस चतुर्थ के लिए वो मांस का टुकड़ा महज एक भोजन नहीं था, ये पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने और अपनी पहचान मिटाने का एक प्रतीक था।
एकदम सही पॉइंट। अगर वे उसे खा लेते तो इसका मतलब था कि उन्होंने राजा की सत्ता को ईश्वर की सत्ता से ऊपर मान लिया है।
मतलब एक तरह से मानसिक रूप से तोड़ने की प्रक्रिया।
हाँ, उन शहीदों के पास एक बहुत ही आसान रास्ता था। वे राजा की बात मानकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने भयानक यातनाएं और मृत्यु चुनी।
ओह!
और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे एक बेहतर पुनरुत्थान की उम्मीद कर रहे थे। उनके लिए इस भौतिक जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण ईश्वर के प्रति उनकी वफादारी थी।
इसी सूची में यिर्मयाह और यशायाह जैसे नबियों का भी जिक्र है ना?
हाँ, यहूदी परंपराओं के अनुसार यिर्मयाह को पत्थर मार मार कर मार डाला गया और यशायाह को आरे से चीर दिया गया।
ये बहुत ही भयानक है। ये लोग समाज से इतने बहिष्कृत हो गए थे कि भेड़ बकरियों की खाल पहनकर पहाड़ों और गुफाओं में भटकते रहे।
बिल्कुल, एकदम हाशिए पर जीवन बिता रहे थे।
ये सब सुनकर मेरे मन में एक बहुत ही स्पष्ट सवाल उठता है। उस समय के समाज की नजरों में ये लोग तो पूरी तरह से हार चुके थे।
जाहिर है।
इनके पास न कोई राज्य था, न पैसा, न घर और न ही कोई सम्मान। फिर इब्रानियों का लेखक उन्हें उन राजाओं और सेनापतियों के बराबर या शायद उनसे भी ऊंचा दर्जा क्यों दे रहा है?
ये बहुत ही वाजिब सवाल है। एक आम इंसान की नजर में तो ये असफलता की चरम सीमा है।
वही तो।
लेकिन लेखक यहाँ न्याय की पूरी धारणा को ही पलट रहा है। डॉक्टर डी सिल्वा स्पष्ट करते हैं कि लेखक के अनुसार बाहरी परिस्थितियां या समाज का नजरिया किसी इंसान का असली मूल्य तय नहीं करता।
अच्छा।
हाँ, इस हिस्से में एक बहुत ही गहरी और चौंकाने वाली पंक्ति है। लेखक कहता है, ये संसार उनके योग्य नहीं था।
संसार उनके योग्य नहीं था, ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि हम संसार के योग्य हैं या नहीं।
एग्जैक्टली। जब दुनिया इन वफादार लोगों को हाशिए पर धकेलती है, उनका मजाक उड़ाती है या उन्हें मार डालती है, तो दुनिया असल में उन विश्वासियों का न्याय नहीं कर रही होती है।
तो फिर क्या हो रहा होता है?
दुनिया जिस क्रूरता के साथ उनके साथ व्यवहार करती है, उससे खुद दुनिया का खोखलापन साबित होता है। तराजू के एक पल्ले पर पीड़ित विश्वासी हैं और दूसरे पर वो विशाल शक्तिशाली समाज।
और लेखक कह रहा है कि परमेश्वर की नजरों में वो शक्तिशाली समाज अयोग्य और हल्का साबित हुआ है।
एकदम सही।
ये नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। दुनिया को लग रहा है कि वो उन्हें सजा दे रही है, लेकिन असल में वो अपना ही असली और बदसूरत चेहरा दिखा रही है।
बिल्कुल।
लेकिन देखिए, अगर हम इस वैचारिक उलटफेर को स्वीकार भी कर लें कि ये पीड़ित लोग ही असली विजेता हैं, तो एक और समस्या खड़ी होती है।
वो क्या?
अगर वे जीत गए तो उन्हें उनके जीते जी उनका इनाम क्यों नहीं मिला? इब्रानियों 11 के अंत में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन प्राचीन नायकों को वह मुख्य वादा या स्वर्गीय मातृभूमि अपने जीवन काल में प्राप्त नहीं हुई। क्या यह उन प्राचीन नायकों के साथ थोड़ा अनुचित नहीं लगता? उन्होंने इतनी भयानक यातनाएं सही, फिर भी उन्हें मुख्य इनाम के लिए सदियों तक इंतजार करना पड़ा।
ये सवाल स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें परमेश्वर की समय रेखा को एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा।
मतलब बिगर पिक्चर देखनी होगी।
हाँ, लेखक यह स्पष्ट करता है कि उन्हें इनाम न मिलना उनकी किसी कमी का परिणाम नहीं था, न ही ये कोई सजा थी। ये एक विशाल सामूहिक योजना का हिस्सा था।
सामूहिक योजना।
परमेश्वर ने वर्तमान पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर, यानी यीशु और नए नियम का प्रबंध किया था। विचार यह है कि कोई भी अकेला उस अंतिम रेखा को पार नहीं करेगा।
ओ, मैं समझ रही हूँ। इतिहास के वे प्राचीन विश्वासी और आज की पीढ़ी दोनों एक साथ मिलकर उस पूर्णता तक पहुँचेंगे। तो ये एक तरह की कम्युनल कम्प्लीशन या सामूहिक पूर्णता है। ये मुझे रिले रेस की याद दिलाता है।
बिल्कुल, एकदम सही उपमा है।
दौड़ का एक धावक अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन वो तब तक नहीं जीत सकता जब तक कि आखिरी धावक फिनिश लाइन पार न कर ले।
एग्जैक्टली।
और ये वर्तमान पीढ़ी पर एक अकर्वणीय जिम्मेदारी डालता है। तत्कालीन श्रोता इस ऐतिहासिक रिले रेस के आखिरी पड़ाव पर खड़े थे।
बैटन अब उनके हाथ में था।
हाँ, इतिहास के वे सभी महान नायक जिन्होंने अपनी जान दे दी, वे अपना हिस्सा दौड़ चुके थे। यीशु के बलिदान ने उस पूरे सफर को एक अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया था।
और ये रिले रेस वाली बात हमें सीधे इब्रानियों 12 के उस मशहूर एथलेटिक रूपक की ओर ले जाती है। डॉक्टर डी सिल्वा इस हिस्से का बहुत ही शानदार विश्लेषण करते हैं।
हाँ, वो गवाहों का बादल वाला हिस्सा।
वही।
अक्सर लोग गवाहों के बादल का जिक्र आध्यात्मिक अर्थ में लेते हैं कि आसमान में कुछ अदृश्य लोग हमें देख रहे हैं,
लेकिन इसका ऐतिहासिक ग्रीको रोमन संदर्भ कुछ और ही कहानी बयां करता है।
हाँ, मैंने भी यही पढ़ा।
ग्रीको रोमन दुनिया में खेल प्रतियोगिताएं और स्टेडियम जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। जब लेखक गवाहों के बादल की बात करता है, तो वो स्टेडियम की सीटों पर बैठे आम दर्शकों की बात नहीं कर रहा है।
तो फिर वो कौन है?
ये वो एथलीट हैं जो पहले ही दौड़ जीत चुके हैं। ये पूर्व पदक विजेता हैं। उनका स्टेडियम में मौजूद होना महज उत्साह बढ़ाना नहीं है, ये इस बात का जीवित प्रमाण है कि ये दौड़ जीती जा सकती है।
क्या बात है।
उनकी उपस्थिति नए धावकों से कहती है कि कितनी भी थकान हो, कितनी भी मुश्किलें हों, अंत तक टिके रहना मुमकिन है, क्योंकि उन्होंने खुद उस दर्द को सहकर जीत हासिल की है।
ये एक बहुत ही प्रेरणादायक छवि है, लेकिन दौड़ जीतने के लिए सिर्फ प्रेरणा काफी नहीं है। लेखक एक शर्त भी रखता है कि हर एक भारी बोझ और पाप को दूर फेंकना होगा।
बिल्कुल,
पाप को दूर फेंकना तो समझ आता है, जैसे किसी भी तरह की बुराई या मूर्ति पूजा से दूर रहना, लेकिन ये भारी बोझ क्या है?
ये एक बहुत अच्छा सवाल है।
मैं इसे एक उदाहरण से समझना चाहूंगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति मैराथन लौटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने अपने पीठ पर सोने से भरा एक बहुत भारी बैग लादा हुआ है, मतलब गोल्ड।
अरे बाप रे, फिर तो वो दौड़ चुका।
वही तो, सोना जाहिर तौर पर मूल्यवान है, ठीक वैसे ही जैसे समाज में हमारी प्रतिष्ठा, हमारी आर्थिक सुरक्षा और हमारा रुतबा मूल्यवान होता है।
सही बात है।
लेकिन अगर कोई उस भारी बैग को पीठ पर लादकर दौड़ेगा तो पक्का रेस हार जाएगा। क्या तत्कालीन ईसाइयों के लिए बोझ का मतलब यही था?
आपका ये उदाहरण तत्कालीन ईसाइयों की स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। रोमन साम्राज्य में शुरुआती ईसाइयों के लिए समाज से अलग थलग होना कोई दार्शनिक विचार नहीं था।
ये उनके लिए एक सच्चाई थी।
हाँ, उनके दैनिक जीवन की कठोर सच्चाई। वे रोमन समाज में अपनी इज्जत, अपनी संपत्ति और अपनी शारीरिक सुरक्षा खो रहे थे, अपने व्यापार से हाथ धो रहे थे।
तो डर तो हो गए।
बिल्कुल, और इसी डर से उनमें से कई लोग अपनी पुरानी जीवन शैली की तरफ लौटने पर विचार कर रहे थे, ताकि वे समाज में अपनी छवि और वो सुरक्षा वापस पा सके।
तो लेखक उन्हें यही समझा रहे कि ये जो सामाजिक प्रतिष्ठा का सोना है, ये इस आध्यात्मिक दौड़ में एक ऐसा बोझ है जो उन्हें मसीह से दूर कर रहा है।
एग्जैक्टली, अगर दौड़ पूरी करनी है तो इस सामाजिक सुरक्षा के बोझ को उतार फेंकना ही होगा।
ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम इंसान स्वाभाविक रूप से समाज में सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं।
बिल्कुल, और इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में साहस के प्राचीन विचार पर भी चर्चा की गई है।
हाँ, प्राचीन दुनिया में साहस की परिभाषा आज से थोड़ी अलग थी।
ये सीधे तौर पर युद्ध के मैदान से जुड़ी थी। ग्रीको रोमन सैन्य दर्शन में एक साहसी व्यक्ति वो था जो युद्ध के मैदान में अपने नगर राज्य की रक्षा के लिए दुश्मनों के सामने डटा रहे।
चाहे कितना भी दर्द हो, वो अपनी जगह से नहीं हिलता।
हाँ, वहाँ से भागना या अपनी रक्षा के लिए पीछे हटना सबसे बड़ी कायरता मानी जाती थी।
इब्रानियों का लेखक उसी सैन्य साहस के विचार को ले रहा है और उसे इस आध्यात्मिक दौड़ पर लागू कर रहा है।
मतलब वो कह रहा है कि समाज की गालियों, तिरस्कार और आर्थिक बहिष्कार के बीच अपने मसीही विश्वास पर डटे रहना ही असली बहादुरी है।
एग्जैक्टली।
जबकि समाज के दबाव में झुक जाना या उनके तानों से डरकर अपने विश्वास से पीछे हटना आध्यात्मिक कायरता है।
लेखक ने सामाजिक अपमान सहने को युद्ध जीतने के बराबर सम्मानजनक बना दिया है।
बिल्कुल,
ये सब कुछ त्याग देने और डटे रहने की बात है। लेकिन अगर हमें सब कुछ त्याग कर दौड़ना है, समाज की तालियों को छोड़ना है, तो हमें किसकी ओर देखकर दौड़ना चाहिए?
ये सवाल हमें यीशु के अंतिम और सबसे महान उदाहरण की ओर ले जाता है। यीशु को विश्वास का मार्गदर्शक और पूर्णकर्ता कहा गया है।
यहाँ डॉक्टर डी सिल्वा एक बहुत ही बारीक भाषाई बात पर ध्यान खींचते हैं। मैंने देखा कि मूल ग्रीक अनुवाद में यहाँ हमारे शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है।
हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यीशु हमारे विश्वास के अग्रदूत नहीं हैं, बल्कि वे विश्वास के ही अग्रदूत हैं।
इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि उन्होंने विश्वास का सबसे पूर्ण और सिद्ध रूप दुनिया को दिखाया। इब्रानियों का 11 के सभी महान नायकों की सूची के अंत में यीशु का नाम आना यह साबित करता है कि उन्होंने विश्वास की इस दौड़ को सबसे दूर तक, सबसे कठिन परिस्थितियों में और सबसे बेहतरीन तरीके से दौड़ा है।
वे केवल रास्ता दिखाने वाले नहीं, बल्कि उस रास्ते पर सबसे आगे चलने वाले हैं।
बिल्कुल,
और उनकी दौड़ का सबसे भयानक और कठिन हिस्सा था क्रूस की सजा। आज हम क्रूस को एक धार्मिक प्रतीक के रूप में देखते हैं, लोग इसे सम्मान के साथ गले में पहनते हैं,
लेकिन ऐतिहासिक रूप से क्रूस क्या था? ये महज मौत की सजा नहीं थी। रोमन साम्राज्य ने इसे लोगों को डराने के लिए एक मानव होर्डिंग के रूप में ईजाद किया था।
मतलब इसका मकसद व्यक्ति को शारीरिक रूप से मारने से ज्यादा उसे सामाजिक रूप से पूरी तरह नष्ट करना था।
एग्जैक्टली, रोमनों के लिए क्रूसिफिकेशन अपमान और शर्म का चरम बिंदु था। जब किसी को क्रूस पर चढ़ाया जाता था तो पूरे समाज को यह संदेश दिया जाता था कि इस व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है, और अगर तुमने बगावत की तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा।
ये समाज से किसी को पूरी तरह से मिटा देने का एक तरीका था।
हाँ, लेकिन डॉक्टर डी सिल्वा बताते हैं कि यीशु ने इस शर्म का तिरस्कार किया, डिस्पाइजिंग शेम।
इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ दर्द सह लिया।
नहीं, इसका मतलब है कि उन्होंने इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं की कि दुनिया या समाज उनके बारे में क्या सोच रहा है। उन्होंने रोमनों के उस सबसे बड़े सामाजिक हथियार यानी शर्म को पूरी तरह से नकार दिया।
यह विचार ग्रीको रोमन दर्शन में भी देखने को मिलता है। प्लेटो, सेनेका और एपिक्टेटस जैसे दार्शनिक भी यही मानते थे कि जो लोग अज्ञानी हैं, जिन्हें सच्ची समझ नहीं है, उनकी राय को महत्व देना सरासर मूर्खता है।
और इसी बात को बाद में 5वीं सदी के मशहूर दार्शनिक और चर्च के पिता जॉन क्रिसोस्टोम ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया था।
उन्होंने क्या कहा था?
उन्होंने कहा था कि यीशु ने वो अपमानजनक मृत्यु केवल ये सिखाने के लिए सही ताकि हम इंसान बाहरी लोगों की राय को कुछ भी न समझे।
बहुत खूब।
जब आप परमेश्वर की नजरों में सही हैं, तो फिर अज्ञानी समाज क्या सोचता है ये बिल्कुल बेमानी हो जाता है।
अज्ञानी समाज की राय को कुछ भी न समझना, ये आज के समय में बहुत प्रासंगिक है।
बिल्कुल।
लेकिन यहाँ एक और बहुत गहरा सवाल है जो मैं सोच रही थी। स्रोत में एक ग्रीक शब्द एंटी की चर्चा की गई है।
हाँ, जिसका अर्थ है के लिए या फॉर द सेक ऑफ।
ठलांग लगा दी। लेकिन ये ग्रीक शब्द एंटी तो ये बताता है कि उन्होंने वो खुशी पाने के लिए जानबूझकर इस शर्म को चुना। क्या इसका मतलब ये है कि उनका विश्वास कोई अंधी छलांग नहीं था, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट और साहसिक गणना थी, एक बोल्ड कैलकुलेशन?
आपने बिल्कुल सही तंत्र को पकड़ा है। ये कोई अंधी भावना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट गणना थी। यीशु ने परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने की उस महिमा और स्थायी खुशी के लिए उस अस्थायी शर्म और दर्द को चुना।
मतलब उन्होंने रिस्क और रिवॉर्ड को कैलकुलेट किया।
हाँ, डॉक्टर डीसिल्वा इसकी तुलना अरस्तु के निकोमैकियन एथिक्स से करते हैं। अरस्तु ने साहस की एक बहुत ही व्यावहारिक परिभाषा दी थी।
अच्छा, वो क्या थी?
उनके अनुसार एक साहसी व्यक्ति वो नहीं है जिसे दर्द नहीं होता, बल्कि साहसी व्यक्ति वो है जो किसी महान और नेक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से दर्द या अपमान को गले लगाता है।
यानी आप तौल रहे हैं कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है, और फिर आप कठिन रास्ता चुन रहे हैं। यहाँ स्रोत में एसाफ का भी एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है, जिसने एक वक्त के खाने के लिए अपना पहलौठे का हक बेच दिया था।
यहाँ भी उसी ग्रीक शब्द एंटी का इस्तेमाल हुआ है। एसाफ ने आज की भूख यानी एक अस्थायी खुशी के लिए अपना स्थायी सम्मान खो दिया।
उसने गलत करना की।
बिल्कुल। इसके बिल्कुल विपरीत यीशु ने भविष्य की महिमा और स्थायी सम्मान के लिए आज के दुख और शर्म को चुना। यह सही गणना थी। ये हमें सिखाता है कि जब समाज के अविश्वासी लोग मसीहों का विरोध करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं, तो ये वास्तव में इस बात का प्रमाण है कि विश्वासी परमेश्वर के मूल्यों के सही पक्ष में खड़े हैं।
ये उनके लिए चिंता का नहीं, बल्कि ये पहचानने का विषय होना चाहिए कि वे यीशु के नक्शे कदम पर चल रहे हैं।
एकदम सही।
यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि बाहरी दुनिया का विरोध असल में आपके सही होने की पुष्टि कर सकता है। अब जब हम इस चर्चा को समेट रहे हैं, हमें इस प्राचीन पाठ को आज के श्रोताओं के दैनिक जीवन से जोड़ना होगा।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
हेलेनिस्टिक काल के मनोविज्ञान में अनुकरण यानी एम्यूलेशन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत था।
हेलेनिस्टिक समाज में अनुकरण का मतलब था कि जब लोग किसी महान व्यक्ति के साहस और कार्यों की प्रशंसा सुनते थे, तो उनके भीतर स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति जैसा बनने की इच्छा पैदा होती थी।
इब्रानियों का लेखक भी ठीक यही उम्मीद कर रहा है।
बिल्कुल, वो चाहता है कि इब्रानियों 11 के नायकों और खुद यीशु भी कहानी सुनकर श्रोताओं के भीतर भी उनके साहस का अनुकरण करने की इच्छा जागे।
और ये अनुकरण हमें एक बहुत ही बुनियादी और कठोर सवाल की ओर ले जाता है कि हमारे लिए अधिक वास्तविक क्या है?
क्या सांसारिक पुरस्कार जैसे संपत्ति, एक बड़ा घर, सामाजिक रुतबा, आर्थिक सुरक्षा, ये चीजें अधिक वास्तविक हैं?
या परमेश्वर की स्वीकृति और उनका अदृश्य राज्य अधिक वास्तविक है? यह सवाल हमें अपनी खुद की प्रोग्रामिंग पर सवाल उठाने को मजबूर करता है।
सही कहा।
बचपन से ही हमें समाज का एक हिस्सा बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिसे सोशल ग्रूमिंग कहा जाता है। हमें सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, समाज में अपनी एक इज्जत बनाओ।
हाँ, और हम समाज की तालियों के लिए भूखे हो जाते हैं, किसी भी तरह की शर्म या नाकामी से डरने लगते हैं।
हम अपनी पहचान उसी समाज के पैमाने पर मापते हैं जिसका खुद का न्याय, जैसा कि हमने आज देखा, पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और खोखला हो सकता है।
बिल्कुल। हम एक ऐसी नियति में पैदा होते हैं जहां हमें समाज का एक भरोसेमंद हिस्सा बनने और उसकी सफलता के पैमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए लगातार तैयार किया जाता है। लेकिन ये ऐतिहासिक अध्ययन हमें एक नई नियति की ओर बुलाता है। मूसा और इब्राहिम की तरह आज के विश्वासियों को भी इस दुनिया में वैचारिक रूप से एक विदेशी की तरह रहना है।
मतलब दुनिया के नियमों से खुद को अलग करना।
हाँ, उन्हें ये पहचानना होगा कि दुनिया जिसे धन, प्रसिद्धि और शक्ति कहती है, परमेश्वर के न्याय के सामने वो अंततः पछतावे का कारण बन सकती है, अगर हमने उसके लिए अपने असली मूल्यों से समझौता किया हो।
आज की इस पूरी चर्चा ने सच में हमारे सोचने के तरीके को चुनौती दी है। हमने शुरुआत में बात की थी कि सफलता और हार की हमारी परिभाषा कितनी सीधी और सतही होती है।
हाँ, बहुत सतही।
लेकिन हमने देखा कि कैसे दुनिया की नजरों में हारे हुए लोग, जिन्हें गुफाओं में भटकना पड़ा, जिन्हें आरे से चीरा गया, वे असल में इतिहास के सबसे बड़े विजेता थे।
और सबसे बढ़कर यीशु ने कैसे दुनिया की सबसे बड़ी शर्म, उस क्रूस को जानबूझकर गले लगाया ताकि वे उस वास्तविक खुशी तक पहुंच सकें।
उन्होंने अज्ञानी समाज की राय को सिरे से खारिज कर दिया। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हम सब उस रिले रेस का हिस्सा है। अगर हमें बचपन से ही समाज में सम्मान पाने और किसी भी तरह की शर्म या नाकामी से बचने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है,
और आज हमने देखा कि इतिहास के सबसे बड़े नायकों ने जानबूझकर दुनिया की उस शर्म का तिरस्कार किया और उसे गले लगाया।
बिल्कुल। तो ये हम सभी के लिए सोचने का विषय है कि आज हमारे जीवन में ऐसा कौन सा सामाजिक मानक है, सफलता का ऐसा कौन सा पैमाना या प्रतिष्ठा का प्रतीक है, जिसे हम उस सोने के बैग की तरह अपनी पीठ पर लादकर भाग रहे हैं।
क्या वो वास्तव में हमारी सुरक्षा है,
या फिर वो एक बहुत बड़ा बोझ है जिसे इसी वक्त उतार फेंकने की जरूरत है ताकि हम अपनी असली दौड़ दौड़ सकें।